देखते हैं तफसीर आयत आले इमरान।
इन यंसुरकुम अल्लाह फला गालिब लकुम, ये याद रखो कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। ये हमारे ईमान का हिस्सा होना चाहिए, इस बात का हमें यकीन होना चाहिए कि वो रब जो कायनात का मालिक है, अगर वो मेरे साथ आ जाए, वो मेरे साथ होगा तो कोई गलबा नहीं पा सकता। ये इंडिविजुअल लाइफ में भी है, इज्तमाई जिंदगी में भी है। वइन यखज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी, ये बात इसलिए बताई गई तवक्कुल के हवाले से कि तवक्कुल इतनी बड़ी शय है। जब इंसान तवक्कुल करने लगे तो सोचे तो सही कि मैं तवक्कुल किस पे कर रहा हूं। मैं उस पे तवक्कुल कर रहा हूं जो कि उसकी मदद अगर मेरे साथ हुई तो फिर मेरे ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता। आप सरसरम ने फरमाया अगर तमाम दुनिया के लोग मिलके तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह का इज़्ज़त ना हो, और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह का इज़्ज़त ना हो। ये बात कहनी तो आसान है, इसका यकीन दिल में बिठाना वो मुश्किल है ना, कि इंसान फिर यकीन नहीं आता ना उसको, तो फिर मदद किसकी चाहनी चाहिए? अल्लाह की। अगर वो छोड़ दे तुमको, फिर उसके बाद वो कौन है जो तुम्हारी मदद करे? अगर उसने बे यारो मददगार छोड़ दिया, वो नहीं तुम्हारे साथ होता, तो अब सारी दुनिया भी तुम्हारे साथ मिल जाए ना, सारी दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाए तो तुम्हारे लिए फायदा नहीं हो सकता। अब हुनैन में देखें, जिनको याद है सीरत से जंगे हुनैन, मुसलमानों का लश्कर बहुत बड़ा था, 12,000 उनकी तादाद थी, तो उनके दिल में उस दिन ये बात आई कि जिस दिन हम 313 थे उस दिन हम जीत गए, तो आज तो हम जीत ही जाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी अपनी कसरत की वो आ गई ना, अल्लाह की मदद खत्म हो गई। तुमने कहा मैं अपनी कसरत तादाद की कसरत की वजह से जीतूंगा, अल्लाह की मदद की तरफ नहीं देखा, तो अल्लाह ने छोड़ दी और फिर क्या हुआ था। तो इसलिए अल्लाह ही से मदद मांगो, क्योंकि उसकी मदद मिल गई तो फिर कोई नुकसान नहीं हो सकता। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को तो चाहिए वो अल्लाह पे ही भरोसा करें। काफिर तो का तो सामान पे भरोसा होता है ना, वो है ना काफिर है तो उसका दूसरा मुझे मिसरा आ रहा है, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, मुझे पहला भूल गया। तो मोमिन जो है उसका भरोसा अल्लाह के ऊपर होता है, इसलिए वो सामान को नहीं देखता कि मेरे पास सामान कितना है, मेरे पास नफरी कितनी है, वो ये देखता है अल्लाह जो सबसे पावरफुल है वो मेरे साथ है, सबसे कुव्वत वाला। इसीलिए इंसान कहता ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये क्या है? अल्लाह पे तवक्कुल है। मैं जितना भी सामान कर लूं, मैं जितनी भी तैयारी कर लूं, मैं जितना भी अपनी तरफ से बेस्ट कर लूं, लेकिन मेरी कोई ताकत और कुव्वत नहीं। ऐसे अल्लाह ताला के पास ही है सारी तो ताकत और कुव्वत। वमा काना लि नबियन, हाँ ये बात है, काफिर है तो तलवार पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। वमा काना नबीयन अन यगुल, किसी नबी के लिए ये जायज नहीं कि वो खयानत करे। ये बात क्यों कही गई? असल में क्या हुआ था कि माले गनीमत में से इब्ने अब्बास ही फरमाते हैं कि जंगे बदर के दिन कोई एक सुर्ख रंग की एक चादर थी, वो माले गनीमत की थी, वो गुम हो गई, नहीं मिल रही थी, तो बाज लोगों ने कहा शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चादर ले ली होगी, वो आपके लिए जायज ही होगी कि आपने उठा ली होगी, तो कोई बात नहीं वो कर सकते होंगे। बाज कहते हैं ये मुनाफिकीन का कॉल था। तो ये आयत नाजिल हुई कि नबी की ये शान नहीं है, नबी तो ऐसा कर ही नहीं सकता, उसके लिए तो मुमकिन ही नहीं है, उसके लिए तो मुनाफसे भी नहीं है कि वो ये करे। इसी तरह गिल का एक मतलब कीना भी है, दुआ भी आती है ना अल्लाह गिल ना हमारे दिल के अंदर हो ईमान वालों के बारे में। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को माफ कर दिया, तो कुछ मुनाफिकीन ने कहा नहीं जी दिल से नहीं माफ किया, ऐसे ही ऊपर ऊपर से किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी की ये शान नहीं है कि दिल में कुछ रखे और जुबान पे कुछ और हो। ठीक है, वो नबी की ये शान नहीं है कि वो दिल में कीने पाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी आता है एक और जगह पे कि हजरत उमर फरमाते हैं खैबर के दिन सहाबा कराम आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि फलां शहीद हुआ फलां शहीद हुआ, तो एक आदमी का जिक्र हुआ, सहाबा कराम ने उसके बारे में कहा वो शहीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हरगिज शहीद नहीं है, मैंने उसको जहन्नुम में देखा क्योंकि उसने माले गनीमत में से एक चादर चुरा ली है। और आपने फरमाया जाओ लोगों में ऐलान कर दो जन्नत में सिर्फ मोमिन दाखिल होगा। यानी ये जो आगे बात आ रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में है ये कि वमई यहलुल याती बिमा गल्ला यौमल कियामत, जो भी खयानत करेगा वो उस खयानत को कियामत के दिन लेकर आएगा। यानी वो अमानत में खयानत है। ये काम नबी तो कर ही नहीं सकता, नबी के बारे में ये गुमान कर रहे हैं कि वो कोई चीज चुरा लें या माले गनीमत में से खयानत कर लें, या वैसे आम खयानत के लिए भी आता है और माले गनीमत में खयानत के लिए भी गिल का लफ्ज आता है। तो ये तुम गुमान भी कैसे कर सकते हो कि नबी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई खयानत करेगा वो तो अपनी उस खयानत की भी चीज को कयामत के दिन उठा के लाएगा, वो उठा के लाएगा। और अगर इसका माना कीना लिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम ये सोचते हो कि उन्होंने जुबानी माफ कर दिया, दिल से नहीं माफ किया, तो ये तो एक खयानत है। कयामत के दिन तो दिल भी सामने आ जाएंगे, जो दिलों में है वो भी इंसान लेकर आएगा, जो भी गिल इसके अंदर पाले में, जो भी कीने इसके अंदर पाले में, वो छुपे थोड़ी रहने। आज तो किसी को भी नहीं पता मेरे दिल में किसके लिए कीना, किसके लिए बोझ भरे में, इल फीलिंग्स किसके लिए हैं, हाँ? लेकिन कयामत के दिन तो सब आ जाएंगी सामने, वो आज छुपाई जा सकती है, उस दिन तो नहीं छुपाई जा सकेगी। और माले गनीमत के बारे में अगर बात कही जाए तो फिर चाहे वो माले गनीमत की खयानत हो या किसी चीज की भी खयानत हो, ये हदीस हमें बताती है कि ये खयानत करने से इंसान के लिए कयामत में कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है, चाहे वो सुई तक की कयामत हो, खयानत हो। आप ये अंदाजा करें कि एक आदमी के बारे में जब उन्होंने कहा कि माले गनीमत भी एक कि वो शहीद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नहीं मैं उसको जहन्नुम में देख रहा हूं। क्यों? इसलिए कि उसने माले गनीमत सिर्फ एक चादर चुराई थी, सिर्फ एक चादर। चादर कौन सी बड़ी चीज है? तो फरमाया मैं उसको देख रहा हूं वो जहन्नुम में, और चादर उसके ऊपर आग का शोला बनी हुई है। अंदाजा कीजिए एक चादर की क्या वैल्यू है। लेकिन खयानत की, यानी जो माल साहब का था, सारे जितने लोग थे उन सारों की एक पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लें, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी था, उसमें से चीज चुराई। अच्छा, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको तो हम सारे ही समझते हैं कि इसका क्या है। हाँ, किसी इंडिविजुअल की होगा, मतलब किसी का घर है या किसी की कोई गाड़ी है या किसी की कोई चीज है, तो उसको फिर भी हम एहतियात से यूज करते हैं कि फलां की है। लेकिन जो पब्लिक प्रॉपर्टी है यानी हुकूमत की है, सब उसको यूज कर सकते हैं, उसको तो हम कुछ समझते ही नहीं। उन जगहों को, उन बिल्डिंग्स को, उन पार्क्स को, उन उनकी गाड़ियों को, उनकी उनको तो हम समझते हैं कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, हालांकि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो सबकी है। उसके अंदर अगर कोई खयानत करता है तो वो सबकी चीजों में खयानत कर रहा है। समझ आई बात? वैसे भी खयानत नहीं करनी, इंडिविजुअल के लिए भी नहीं खयानत करनी, लेकिन जिस वक्त सबकी कोई चीज, सबकी उसके अंदर हिस्सा हो, उस वक्त जो खयानत करेगा उसका वबाल तो बहुत गुना बढ़ जाता है। और ये एक हदीस है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, ये मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जगह तशरीफ फरमाते तो ये खयानत का जिक्र आया, उस कितना इसका गुना सख्त है, तो फरमाया मैं तुम में से किसी एक को कयामत के दिन इस हाल में ना पाऊं कि उसकी गर्दन पे ऊंट सवार हो और वो बुड़बुड़ा रहा हो, यानी ऊंट बोल रहा है, और वो शख्स कहे या रसूल्ला मेरी मदद करें, मैं कहूंगा मैं तेरे लिए किसी चीज का मालिक नहीं हूं, मैं तुझे बता चुका था। यानी एक आदमी ये ना हो कि मेरी उम्मत में से ऐसा हो उसने ऊंट की खयानत की है, अब वो ऊंट उसके ऊपर है सवार और वो ऊंट बोल रहा है और ये बंदा कहता है अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेगा तो कहेगा कि या रसूल आप मेरी मदद करेंगे, मैं आपका उम्मती हूँ। आपने फरमाया मैं क्या तुम्हारी मदद करूं, मैं तो तुम्हें बता दिया था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मैं तुम में से किसी एक को कयामत के दिन इस हाल में ना पाऊं कि उसकी गर्दन पर सवार घोड़ा हिन हिना रहा हो और वो कहे या रसूलल्लाह मेरी मदद फरमाए, मैं कहूंगा मैं तेरे लिए किस चीज का मालिक हूं, किसी चीज का मालिक नहीं हूं। और फिर इसी तरह फरमाया कि किसी की गर्दन पे सवार बकरी हो और वो मिमिया रही हो, वो कहे या रसूलल्लाह मेरी मदद करें, मैं कहूंगा मैं तेरे लिए किसी चीज का मालिक नहीं हूं। हाँ उसकी गर्दन पे सवार कोई कपड़ों की गठड़ी हो जो हिल रही हो तो वो कहेगा या रसूल मेरी मदद फरमाए, मैं कहूंगा मैं तेरे लिए किसी चीज का मालिक नहीं। एक्चुअली उस जमाने में इन्हीं चीजों की ट्रेडिंग होती थी, इन्हीं चीजों के ये ऊंट हैं या ये बकरियां हैं या ये कपड़े वगैरह का कारोबार होता था। तो आपने फरमाया ये ना हो कि कयामत के दिन ऐसे तुम आके मुझे कहो और मैं वहां पे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा, फिर कि तुमने दुनिया में इन चीजों पे खयानत की हो और एक शख्स को इस हाल में मैं ना पाऊं कि उसकी गर्दन पे सोने और चांदी हो और वो कहे कि या रसूल अल्लाह मेरी मदद करें, मैं कहूंगा मैं तेरे लिए किसी चीज का मालिक नहीं, मैं तुझे तबलीग कर चुका। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरी जिम्मा हो जाएंगे उससे, मैंने तुम्हें बता दिया था ना, और दुनिया में हमें वॉर्न कर दिया कि ये ना हो तुम ये कहते हुए आओ उस दिन। खयानतें बहुत तरह से होती हैं माल में। मिसाल के तौर पे एक मिसाल है, अब ये हदीस से हम देखते हैं कि मुस्लिम में ये हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनू असद के एक शख्स को सदकात वसूल करने के लिए आमिल बना के भेजा। क्या होता था उस जमाने के अंदर, सदका जकात कलेक्शन के लिए हुकूमत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, वो लोगों के पास जाते थे और जकात या सदकात उनसे लेके आते थे, क्या रिसीव करते थे उनसे। तो जब वो सदकात वसूल करके आया तो उसने आके कहा ये तो आपका है, ये इतना माल ये आपका है और ये माल उसने मुझे तोहफे में दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे खड़े होके पहले अल्लाह ताला की हमदो सना बयान फरमाई, इसके बाद फरमाया जिन आमिलों को मैं भेजता हूं उनको क्या हो गया है, वो कहते हैं ये आपके लिए और ये मुझे हदिया दिया गया। ये आदमी अपने बाप या अपनी माँ के घर में जाके क्यों नहीं बैठ गया था, फिर हम देखते कि उसको हदिया दिया जाता है या नहीं, ठीक है ना। फिर फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम में से जो शख्स भी सदकात में से कोई चीज लेगा कयामत के दिन जब वो आएगा तो वो चीज उसकी गर्दन पे सवार होगी, ऊंट बड़बड़ा रहा होगा, गाय होगी ढकार रही होगी, बकरी मिमिया रही होगी। उस वक्त में ना इन चीजों को जकात में दिया जाता था, कोई ऊंट देता था कोई बकरी, क्योंकि ये रेवड़ होते थे उनके पास। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए, इतने ऊपर किए कि आपकी बगलों की सफेदी हमें दिख रही थी, फरमाया दो दफा ए अल्लाह मैंने पहुंचा दिया, अल्लाह मैंने पहुंचा दिया, यानी अब इनके ऊपर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में आता है, फरमाया हमने तुम में से जिस शख्स को किसी मनसब का आलिम आमिल बनाया और उसने कोई सुई या इससे छोटी कोई चीज भी हमसे छुपा ली तो यह खयानत है जिसको क्यामत के दिन वो लेके आएगा। यानी आप माल की कलेक्शन के लिए उसको अगर बनाया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव या कोई ओहदा किसी को मिला हुआ है, अब वो जब किसी ने कोई किसी बड़ी सीट पे होता है ना तो लोगों ने जब अपने काम करवाने होते तो वो क्या कहते हैं, ये आपके लिए ये तोहफा है, ये आपके चाय पानी का खर्चा है, ये आम की पेटियां आपके लिए लाए हैं, ये बच्चों के लिए मिठाई है। अब वो क्या है उसके अंदर ये सारी रिश्वत होती है। वो बंदा क्या उस सीट पे ना बैठा होता तो क्या ये लोग देते उसको, कभी भी नहीं देते थे, कभी भी नहीं देना था ना। इसका मतलब ये हराम है जो उस सीट की वजह से किसी को दिया जा रहा है, वो हराम माल है। और हराम माल यानी ये खयानत है, उस बंदे ने उस ओहदे की वजह से वो चीज पाई है। अब आप सोच लें कि इसके बाद ऐसे इंसान के लिए वो चीज कयामत के दिन वबाल बन जाएगी। हमारे यहाँ इस किस्म की बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे मसलन है खयानत जमीनों में, खयानत زمین میں خیانت بھی کرنا، یعنی اپنی طرف تھوڑی سی زمین ملا لی. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہ ہے جو شخص پڑوسی کے کھیت کی زمین یا اس کے گھر کی زمین دبا لے، یعنی اپنی دیوار کھڑی کرنی تھی تھوڑی سی آگے بڑھا لی، تھوڑی سی بس. فرمایا اگر ایک ہاتھ زمین بھی نہ حق اپنی طرف کر لے گا تو ساتوں زمینوں کا توق اس کو پہنایا جائے گا. ایک نہیں، سات زمینیں ان کا توق بنا کے، توق سمجھتے ہیں ایک نیکلس سمجھ لیں، اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی. ایک اور حدیث میں اس طرح آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی ہے، کہ کسی بھی شخص نے اگر ظلم کرتے ہوئے بالشت بھر، بالشت کتنی ہوتی ہے، یہ ہینڈ، یہ ہاتھ، ایک ہاتھ، اتنی زمین ہتیا لی، چاہے وہ گورنمنٹ کی تھی، گورنمنٹ کی تو زمینیں آرام سے ہتیا لیتے نا، یہاں تک اپنی دیوار بنانی تھی ذرا آگے کر لی، تو اللہ تعالیٰ اسے اس بات کا مکلف بنائیں گے کہ وہ اسے سات زمینوں کو کھودے گا، سات زمینوں تک کھودے، یہ اس کو کہا جائے گا، پھر اس کا توق بنا کے قیامت تک اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں کر دیا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مرے گا تو اس کے بعد اس کا یہ شروع ہو جائے گا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوگا کہ اس کو یہ توق کو اپنے گلے میں ڈالے رکھے گا. ہم سے تو ذرا سی گروسری اٹھا کے لے جانی کہیں ہو تو مشکل ہو جاتی ہے، ساتوں زمینوں کا توق اندازہ کریں. ایک حدیث میں آتا ہے جسے ہم حاکم بنائیں اگر اس کا گھر نہ ہو تو وہ گھر بنا سکتا ہے، بیوی نہ ہو تو بیوی کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، اس کے سوا اگر کچھ اور لے گا تو خائن ہوگا. اور ہمارے حال کیا ہوتے ہیں، جس وقت ہمارے پاس عہدہ نہیں ہوتا اس وقت تو وہ کیسے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، جب عہدے سے ریٹائر ہوتے ہیں اس کے بعد تو دیکھیں کہ گھر کی شان و شوکت اور بزنسز اور کہاں کہاں کیا کیا مل چکا ہوتا ہے. وہ کس وجہ سے آیا؟ اس عہدے کی وجہ سے آیا نا. میں نے آپ کو ابھی حدیث بتا دی کہ یہ بندہ اس جگہ پہ نہ ہوتا، اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا ہوتا تو کیا اس کو یہ ملتا؟ نہیں ملتا نا. تو وہ خیانت ہے اس کے لیے. یہ حدیث ہے، اللہ معاف کرے. اسی طرح یہ تو زمین ہتھیا لینے کی بات ہے، کبھی کبھی لوگ کرائے کے گھر لیتے ہیں اور پھر ان کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، پھر ان کو چھوڑتے ہی نہیں، سمجھتے ہیں بس یہ ہمارا ہی ہو گیا، اب اس کے اندر تو ہمارا قبضہ ہے، جائز ہے ہمارے لیے. بعض دفعہ اسی طرح لوگ کرائے کے گھروں کا برا حال کر دیتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں، وہ بھی ایک خیانت ہے، امانت تھی اس کے پاس نا وہ چیز، اور اس میں خیانت کی. اسی طرح کبھی کبھی کسی مزدور کو مزدوری نہ دینا اور اس کو ڈیلے کیے جانے کیے چلے جانا. حدیث میں آپ کو پہلے بتاتی ہوں پھر ابن عثیمین کی بات، کہ حدیث میں آتا ہے قرض ادا کرنے میں صاحب حیثیت کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یعنی صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس ہے بھی پیسے لیکن وہ قرض نہیں دے رہا واپس، ٹال مٹول کرتا جا رہا ہے، ٹال مٹول کرتا جا رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ جس وقت میں دے دوں گا دے دوں گا دے دوں گا، اور ایک دن سوچتا ہے کہ اب تو میں اتنے کم بھی دے دوں تو کوئی بات نہیں، اب تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ میں نے دے بھی دیا، اب میرے کم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر میں نہ ہی دوں تو تب بھی ٹھیک ہے، یا تھوڑے دے کے اس کو ٹرخا دوں کہ چل اب اتنے پہ ہی تو خوش ہو جا، شکر کر میں نے کچھ تو تجھے دے دیا. سب اس میں آتا ہے کہ یہ ظلم ہے. فرمایا ابن عثیمین نے اس حدیث کی شرح میں کہ یہ حق پورا کا پورا ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، چاہے آج دے یا دس دن بعد یا دس سال بعد. ہم تو جیسے وقت وقت گزرتا جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں اب تو اتنی ضرورت ہی نہیں دینے کی. اسی طرح خیانت یہ بھی ہے جو میراث میں کی جاتی ہے، وراثت جب نہیں تقسیم کی جاتی، ایک ہی سمجھ لیتا ہے میں ہی سارا قبضہ کر رہا ہوں، یہ بھی خیانت ہے، دوسرے کی امانت ہے نا وہ چیز، وہ دوسرے کا حق ہے، آپ نے وہ حق مار لیا. بہت ساری بیٹیاں ایسے کرتی ہیں کہ ان کی مائیں فوت ہوں تو جا کے پہلے پہلے ہی ان کے زیوروں پہ قبضہ کر لیتی ہیں، زیور اور یہ زیور میرا، یہ میری بہن کا، یہ میں اس کا، بھائیوں کو ہمارے کیا اس کی ضرورت ہے. تو یہ خیانت ہے، جو بھی مال ہے سارا کا سارا وراثت ہے، سوئی تک وراثت میں تقسیم ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں اٹھا کے پہلے ہی جمع کر لیتی ہیں کہ یہ ہماری فیوریٹ ہے، یہ ہماری فیوریٹ ہے. اسی طرح خیانت بہت طرح چیزوں میں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ جو دفتر کی چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنا، वो प्रिंटिंग करना, उससे चीजें करना, ये भी खयानत है, क्योंकि वो इस चीज के लिए नहीं है। उन्होंने तो आपको इसलिए दी भी थी कि आप अपने दफ्तर के काम करें, उससे घर के कामों के लिए तो नहीं दी भी थी। उसमें कितनी उस स्टेशनरी को यूज करते हैं बहुत से लोग। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के बाद जा रहे थे, तो अबू राफे फरमाते हैं कि वहां कहीं जा रहे थे तो बकी के करीब से गुजरे, तो फरमाया तुफ है तुझ पे, तुफ है तुझ पे। तो कहते हैं कि मैंने समझा कि मुझे कह रहे हैं, तो मैं पीछे हो क्या जरा। तो आपने फरमाया क्या बात है? तो मैंने कहा या रसूलल्लाह, आपके इस कहने की वजह से मैं रुक गया, कि पता नहीं मैंने कुछ किया ऐसे। आपने फरमाया मैंने तुम्हें नहीं कहा, बल्कि ये कब्र वाले आदमी को कहा है कि इसे मैंने एक कबीले की तरफ आमिल बना के भेजा था, उसने एक चादर ले ली थी, वो चादर अब आग बन के इसके ऊपर भड़क रही है। तो सोचें कितनी सख्त मुश्किल का वक्त, यानी कब्र के अंदर उसके लिए अजाब का सबब बनी वो चादर। हशर में भी ये होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने ऊपर लेकर आएगा उस चीज को कयामत के दिन। यहाँ पे ये इसका प्रूफ मिल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खयानत से बचो, खयानत करने वाले की रुसवाई कयामत के दिन होगी, सुई धागा तक पहुंचा दो। सुई धागा यानी कितनी मामूली चीज है, हकीर चीज भी जो कोई हो वो भी आपकी नहीं है, आप उसको दे दें इससे पहले कि कयामत के दिन उसके ऊपर बबाल हो। इब्ने मरदवे में ये रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई पत्थर जहन्नुम में डाला जाए तो 70 साल तक चलता रहेगा लेकिन तय को नहीं पहुंचता। खयानत की चीज को इसी तरह जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा, फिर खयानत करने वाले से कहा जाएगा जाओ अब उसको लेके आओ। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला खयानत करने से महफूज रखे। तो फरमाया सुम्मा तो वफा कुल्लु नफ्स मा कसबत वहुम ला युज़लमून, फिर उनको पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने कमाई की, और वो नहीं जुल्म किए जाएंगे, यानी कयामत के दिन वो उनको जो भी उन्होंने खयानत की होगी वो लेकर आएगा। मगर ये ना समझना कि नबी कभी खयानत कर सकते हैं, क्योंकि नबी कभी खयानत नहीं कर सकता, उसकी शान के ही नहीं लायक है। और फिर फरमाया अफा मन इत्तबा रिदवान अल्लाह कमन बा सखत मिन अल्लाह, तुमने क्या समझते हो जो अल्लाह की रजा की पैरवी करने वाला है उसके बराबर हो सकता है जो उसकी नाराजगी का कोई काम करे, अल्लाह की नाराजगी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करके पलटे। या पिछले कॉन्टेक्स्ट में बात समझी जाए तो ये कि नबी अलैहिस्सलाम से तुम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ऐसी कोई काम करें। आम मोमिन भी वो अल्लाह की रजा की जो पैरवी करता है, जो अल्लाह ताला के कहने पर चलता है, वो उसके बराबर नहीं हो सकता जो अल्लाह की नाराजगी का काम करे। तो नबी को तुम कैसे ये सोच सकते हो? या ये भी आप कह सकते हैं कि भला नबी अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की रजा पे चलने वाले हैं उसके बराबर हो सकते हैं जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम करे, यानी जो खयानत करे? तो तुमने कैसे सोच लिया? कम अम्बा भी सख्त मिन अल्लाह, यानी इसका मतलब खयानत अल्लाह की नाराजगी का सबब है। तो दो किरदार हैं ये, तुमने कैसे सोच लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के हो सकते हैं कि वो अल्लाह की नाराजगी का कोई काम करेंगे? वाहु जहन्नम, जो ऐसा है जो अल्लाह की नाराजगी के साथ पलटता है वो तो उसका ठिकाना जहन्नम है। अब असल मसीर कितनी बुरी है लौटने की जगह। अब आप देख लें ये जो खयानत करने वाली मैंने आपको हदीस बताई है ना, ये सारे मुसलमानों की बातें हैं, काफरों की बातें नहीं हो रही। हम तो अपनी नमाज रोजों से ही समझ लेते ना, बस हमारा दीन जी कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद नहीं कोई चीज की जरूरत। हालांकि आप देखें कि खयानत अगर कोई करेगा तो अब नमाजें हैं उसकी और वो सारी तो एक तरफ रह गई, उसको भुगतना पड़ेगा। सुम्मत वफा कुल्लू नफ्सिम्मा कसबत, जो उसने कमाई किया पूरा पूरा उसको बदला दिया जाएगा उसका। हम दराजात, और ये जिन जिसका मैंने अभी आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने इसको आमिल बना के भेजा था, जाहिर है मुसलमान ही था वो, और अब उसके ऊपर आग बनी हुई है वो चादर कब्र में। कब्र का अजाब भी एक मुसलमान को ही हो रहा था। तो ये जो माली मामलात है ना, इनमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत है कि हमसे कहीं खयानत ना हो जाए। सोच तो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स और हैं जो हम जिंदगी में तलाश कर सकते हैं कि जहां पे खयानतें होती हैं। हम दराजात उन इंद अल्लाह, वो दर्जों में है अल्लाह के नजदीक। कौन दर्जों में है? यानी हर एक के दर्जे मुख्तलिफ हैं, हर एक के दर्जे अल्लाह तला के, हाँ जो अल्लाह को राजी करने वाले हैं उनके भी दर्जे हैं। सबसे ऊपर के दर्जे पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वलिकुल्लिन दराजात मिम्मा आमिलू, हर एक के दर्जे, सूरह नाम में अल्लाह तला ने फरमाया हर एक के दर्जे हैं, जिस मुताबिक उसने अमल किया उसके मुताबिक है। तो जो अल्लाह की रजा चाहते हैं उनमें भी हर एक का रैंक सेम नहीं है, कोई टॉप पे है, और जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं उनमें भी डिफरेंट रैंक्स पे हैं लोग। अब हम सारे पढ़ने वाले हैं, हम सारे मुसलमान हैं, हम सारे कुरान पाक के तालिबे इल्म हैं, लेकिन हम में से हर एक का रैंक सेम थोड़ी होगा, हर एक अलग अलग दर्जों पे होगा। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, अल्लाह देख रहा है, वो उसको खबर है, वो खुद वॉच कर रहा है जो भी वो अमल करते हैं। लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अलबत्ता तहकीक एहसान किया अल्लाह ने मोमिनों पर। अल्लाह ताला ने इतने हमारे पर एहसानात किए हैं उनको हम गिन भी नहीं सकते, मगर किसी चीज को भी अल्लाह ताला ने कुराने पाक में मन नहीं फरमाया कि मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर, मगर एक चीज को अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मेरा एहसान है ना। कहा आंखें मेरा एहसान है कि मैंने तुम्हें दी, जिंदगी मेरा एहसान है कि मैंने तुम्हें दी, सेहत मेरा एहसान है कि मैंने तुम्हें दी, ये नहीं फरमाया। क्या फरमाया? क्या एहसान है? इज बाअथा फीहिम रसूल, जब भेजा उनमें एक रसूल, तो ये अल्लाह का एहसान है कि उसने रसूल भेजा, ये उसका एहसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक भी बहुत बाबरकत है, बहुत रहमत है लिल आलमीन, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को एहसान कहा गया, आपकी जात को नहीं कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 40 साल उन्हीं में रहते थे, उस वक्त को नहीं कहा गया। जो आपको रसूल बना के भेजा गया वो एहसान है। क्यों? इसलिए कि जब आप रसूल बन के आए हैं तो तब आप लोगों को जोड़ने वाले बने अल्लाह के साथ, लोगों को हिदायत का रास्ता बनाने बताने वाले बने, तब आप सिराते मुस्तकीम की पहचान कराने वाले बने, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के अहकामात को इंसानियत तक पहुंचाया और रिसालत का हक अदा करके पैगंबर बने। तो ये है अल्लाह का एहसान कि उसने एक रसूल भेजा जो तुम्हें ये अल्लाह ताला की पहचान भी कराए, उसकी बातें भी बताए, वो किस में राजी होता है, किससे नाखुश होता है, जहन्नुम का रास्ता कौन सा है, जन्नत का कौन सा है, और सिर्फ बताए नहीं, वो करके भी दिखाए, करके भी दिखाए, अमली नमूना भी पेश करें। और सिर्फ यही नहीं कि अमल भी करके दिखा दिया, बता भी दिया ये गलत है ये सही है, ये गलत है ये सही है, इससे अल्लाह खुश होता है इससे नहीं खुश होता, सिर्फ ये नहीं किया, मोटिवेशन भी दी, उनको उभारा भी, उनको तैयार भी किया, उनकी तरबियत भी की जो आगे आ रहा। तो अल्लाह का ये एहसान है कि उसने एक रसूल भेजा मिन अनफुसी में, उनके अपने नफ्सों में से, यानी कोई जिन्नों में से नहीं भेज दिया, फरिश्तों में से नहीं भेज दिया, इंसानों में से भेजा। वरना हम कहते हैं ये देखो तो ये तो फरिश्ता है, ये तो कर ही सकता है, हम तो कर नहीं सकते। तो अल्लाह का एहसान है तुम में से भेजा, इसका मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे। कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम, सूरह कहफ एंडी इस पे होती है, मैं बशर हूं तुम्हारे जैसा, बस ये कि मेरे ऊपर वही आती है। तो तुम्हारे अपने अंदर से थे। अब आजकल यही झगड़ा खत्म नहीं होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे कि बशर थे, नूर थे कि बशर थे। ओ भाई देखो, नूर कौन सी, नूरी मखलूक कौन सी है? फरिश्ते। फरिश्ते अफजल है कि इंसान अफजल है? अल्लाह ने तो फरिश्तों को सजदा करवाया कि वो इंसान को सजदा करे, तो इंसान अफजल हुआ ना, बशर अफजल हुआ। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरी मखलूक क्या के उनको फरिश्ता बना दिया, तो वो तो इंसान से कम तर दर्जा हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर होते हुए ये सब इस आला मकाम पे पहुंचे, यही तो बड़ी शान है। नूरी मखलूक की कौन सी बड़ी शान है? इसीलिए उनके लिए तो कोई जन्नत नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, उनके अंदर तो ये एबिलिटी ही नहीं है। इसलिए मिन अनफूसी हिम से पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ही थे। यतलू अलैहिम आयाती, उनका क्या काम था? सबसे पहला काम तिलावत करें वो इन पर आयात, उसकी अल्लाह की आयात पढ़ पढ़ के सुनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के कुरान की तिलावत की, लोगों को बताया, सहाबा कराम जो कातबीन वही थे उनको बताया ये आयत फलां सूरत में फलानी जगह पे लिखो, ये आयत फलानी जगह, यानी जो हम ये पढ़ रहे हैं ना ये तरतीब भी अल्लाह की तरफ से, ये बेशक उस तरह से नाजिल नहीं हुई, पहले सबसे पहले सूरह बकरा तो नहीं नाजिल हो गई थी, वो तो मदनी सूरत थी, लेकिन सेकेंड नंबर पे है कुरान में, ये किसने यहाँ पे रखवाई? इस आयत के बाद ये आयत आएगी कि किसने बताया? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये भी अल्लाह की तरफ से। और आप पढ़ के सुनाते थे कि किस तरह से पढ़ना है इसको, इन आयात को। इसलिए जो कुरान भी है ना, जो लोग कहते हैं हम हदीस नहीं मानते, और खुदा के बंदो कुरान क्या है, ये भी तो मुतवातिर हदीस है, ये किसकी जुबान से अदा हुआ? आपको कोई पहाड़ पे तो नहीं पढ़ा मिल गया था, ये भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ही अदा हुआ, तो उसको मानते हो, कहते हदीस नहीं माननी, तो ये हदीस ही तो है। जैसे बाकी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकली, इसी तरह कुरान भी निकला। जब आपकी बातों को ही तुमने निगेट कर दिया तो क्यों तुम कुरान को भी फिर निगेट करो? कुरान को कहते नहीं, कुरान ठीक है, हालांकि वो भी उन्हीं जात से आया, और हदीस हम नहीं मानेंगे, वो भी उन्हीं जात से आई है। तो यतलू अलैहिम आयाती, उन्होंने पढ़ना सिखाया कुरान का, इसलिए कुरान को सिखाया, जिसकी तिलावत सिखाई, इसको बताया, इसीलिए हम सबको कुरान पाक सही पढ़ना आना चाहिए। सही पढ़ना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया ऐसे ही पढ़े हम, इसको खोल के बयान किया। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासिद में से एक मकसद था, रिसालत के मकासिद में से, कि आप कुरान पहुंचा दें। अब हम पढ़ने पे ज्यादा तवज्जो नहीं, आज तक आजकल लोगों की इतनी गलतियां भी होती रही, कहते हैं वो हम ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, वो भाई ट्रांसलेशन उस तरह तो नहीं है ना, ट्रांसलेशन अल्लाह के अल्फाज नहीं है, ट्रांसलेशन को आप कुरान नहीं कह सकते याद रखें। इसीलिए एक एक वो होता है ना, एक कॉपी ऐसी होती है जिसमें सिर्फ ट्रांसलेशन लिखी होती है, उसको कुरान ना कहा करें, कुरान का तर्जुमा हो सकता है, कुरान नहीं है, कुरान वही है जो ये अरबी अल्फाज है जो अल्लाह की तरफ से है, बस इनको सही पढ़ना आना चाहिए। वह युज़क्कीहिम, और उनका दूसरा एक और काम क्या था, तस्किया करें, पाक करें, ट्रेनिंग करें सहाबा कराम की, उनकी तरबियत करें। ऐसे ही तो नहीं फिर उसके बाद सहाबा कराम कैसे उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, इसलिए कि आपकी ट्रेनिंग में रो रहे थे। और कैसे पाक करने का मतलब क्या है? पाक करने ऐसे है कि जैसे आपका आपका गार्डन है, ठीक है, अब इस गार्डन के अंदर आप देखें, आप एक माली रखते हैं, वो क्या करता है? वो उसमें से झाड़ झंकार निकालता है, वो पौधों को पानी देता है, वो वीड्स को खत्म करता है, वो फालतू जड़ी बूटियां उनको निकाल देता है, वो कटिंग करता है पौधों की, वो उनको सही ट्रिम करता है, कितनी ये चीजें हैं ना जरूरी। इसी तरह रसूल जो है वो ऐसे शेप देता है कैरेक्टर्स को लोगों के, कहाँ पे गलतियां ये निकालनी है, कहाँ पे ये चीज अल्लाह को पसंद नहीं है, ये खत्म करो, ये ऐसे करो, इसको इस काम को इस तरह करो। सबसे पहले ये कि शिर्क से पाक करता है, बिदात से पाक करता है, और शकुक शुभात जो आते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं दीन के बारे में, उनसे पाक करता है। ऐसी तमाम बातें जो कि अल्लाह ताला की नाराजगी की हैं, उनसे लोगों को पाक करता है। तो वो तस्किया का काम करता है रसूल, और जब तस्किया होता है तभी इंसान की पर्सनैलिटी खूबसूरत होती है, जैसे बाग खूबसूरत तभी लगता है ना जब माली उसकी निगहदाश्त करता है। और तस्किया सोहबत से आता है, कि इंसान किसी की सोहबत में रहे वो फिर उसको आता है। आजकल तस्किया का तो खैर क्या कहना, कोई किसी को अगर कह दे कि भाई आपके अंदर ये चीज सही नहीं, इसको सही कर ले, तो वो तो कहता है ये तो पता नहीं आपने तो कयामत ही आ गई बस, फिर वो तो छोड़ेगा ही नहीं। तस्किया भी, ये भी हिम्मत वाले लोगों का काम है कि वो अपने लिए तस्किए के लिए सोचें, जहां पे हर कोई अपने आप को परफेक्ट समझता हो वहां पे क्या तस्किए का अमल हो सकता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, और वो सिखाता है उनको किताब और हिकमत। यही आयत हम इसी तरह से पहले पढ़ भी चुके हैं सूरह बकरा में। और वो तालीम देता है उनको किताब की, यानी तालीम क्या देना होता है, तालीम देना ये कि उनको सिखाता है, समझाता है। ये जो हमें सारी बातें, मसलन है قرآن پاک میں 700 دفعہ آیا نماز پڑھنے کا حکم، 700 دفعہ۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کے اوقات کیا ہیں، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، نماز کے کس رکن میں کون سی تسبیح پڑھنی، کون بتائے گا ہمیں؟ یہ ہے رسول کا کام کہ وہ تعلیم دے کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت سے مفسرین نے کہا اس کا مطلب ہے حدیث، سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ حکمت کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں ساری حکمت ہی ہے، وہ وزڈم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ نے جو جس طرح سے کر کے دکھایا، یہ سب حکمت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو سکھاتے تھے۔ تو آپ نے صرف کتاب نہیں سکھائی ہے، حکمت بھی سکھائی ہے۔ اور یہ جو تین کام ہیں، اگر یہ ہی نہیں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے اور سوچا کہ نہ ہمیں تو تزکیے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کوئی تلاوت صحیح کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیم کی ضرورت ہے، تو اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں سے کیا لیا پھر؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کرنے ہی آئے تھے، آپ کا مقصد رسالت ہی یہ تھا، اور اسی بات پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا احسان ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ وہ آیا نہیں پہلے ہم نے پڑھا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تو تم تو کنارے پہ تھے آگ کے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے کیا تھی؟ گمراہی تھی، لوگ شرک میں مبتلا تھے، جہالت، اور کیسے کیسے کبیرہ گناہ کرنے والے تھے۔ اللہ نے رسول بھیج کے احسان کیا تمہارے اوپر، تو یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اب جو احسان ہوا ہوا ہے، اب اس احسان کے بعد ہونا کیا چاہیے؟ کہ اس احسان کو احسان سمجھا جائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا اس کو پورا کیا جائے۔ اب وہ تو مقاصد یہ ہیں، لیکن آج اگر تلاوت قرآن کی بات آتی ہے، تعلیم قرآن کی بات آتی ہے، تعلیم حدیث کی بات آتی ہے، تو کہتے ہیں کہاں پہ فرض لکھا ہوا ہے؟ او بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مقصد رسالت ہی یہ تھا، اب کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ تو کرنے ہی یہ کام آئے تھے، وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ اس کے ان کے جانے کے بعد ان کے میلادیں کریں اور ان کی نعتیں پڑھیں، اس لیے تو نہیں آئے تھے، وہ آپ کو یہ چیزیں کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اور یہ چیزیں ان سے سیکھنی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو جو بہت بڑی علم والے سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں کچھ سے نہیں سیکھنے کی ضرورت۔ جب یہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ تفسیر جو ہے، یہ کیا ہے؟ تعلیم ہے کتاب کی۔ یہ جو آیات کی تشریح کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے کتاب کی۔ لیکن اگر یہی ہم نہیں سیکھنا چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے اس طرح نہیں سمجھنا چاہتے، ہم اپنی اپنی طریقے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بتائیں کہ ہم نے کیسے اس احسان کو کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا، اس کی ہم نے کیا احسان مندی، اس احسان کو ہم نے کیا سمجھا پھر؟